सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैंने खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे देश ने 6 संकल्प लिए हैं, या कह लीजिए कि 6 जिन आयामों पर काम किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन इससे पहले कुछ दूसरी खबरें जो हैं उन्हें देख लेते हैं। आज की शुरुआत मैं खबर से नहीं कर रहा हूं, सच पूछे तो कल का जो मुख्य विषय था उसे ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि आपके साथ यह बात नहीं हुई हो, लेकिन हो सकती है। इसलिए हो सकती है क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं यह किसी के साथ हुई है, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूं कि किस तरीके से जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो आप एकदम से भटक जाते हैं, एकदम ही भटक जाते हैं। पूछा कुछ जा रहा है, समझा कुछ गया है, पता नहीं क्या समझा गया है, इसके बारे में तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन लिखा कुछ और जा रहा है, और जो कुछ लिखा जा रहा है उसके आधार पर समझा जा सकता है कि वो नहीं समझा गया जो समझा जाना चाहिए था। आपको ध्यान है कि मैंने कौन से प्रश्न पर चर्चा की थी कि धरती मां की सेवा करना है, अगर आप कार्बनिक खेती करते हैं तो धरती मां की सेवा करना है, और इसके प्रकाश में सेवा को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकाश में सेवा को परिभाषित कीजिए। मेरे इस छोटे से प्रश्न पर गौर कीजिएगा कि क्या मैंने ये पूछा था कि प्राकृतिक कृषि करना किस प्रकार धरती मां की सेवा करना है। मैं फिर से अपने प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, क्या मैंने ये पूछा था कि प्राकृतिक कृषि करना धरती मां की सेवा करना है, पूछा था मैंने? नहीं पूछा था। अनफॉर्चुनेटली, जी हां, मैं इसे दुर्भाग्यवश ही कहूंगा, मेरे पास जो कुछ उत्तर आए हैं, हालांकि मैं उत्तर की अपेक्षा आप लोगों से नहीं करता हूं, लेकिन चलिए, चूंकि कुछ उत्तर आ गए हैं और उनको देखने के बाद मैं बिल्कुल चौंक गया और मुझे ये संकेत बड़े भयावह और बड़े खतरनाक लगे, तो मैंने फैसला किया कि नहीं, इस पर तो बात की ही जानी चाहिए। मेरे पास जो उत्तर आए हैं, ज्यादातर उत्तर इसी तरह के हैं कि मैंने ये पूछा हो कि यदि आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो इसे किस प्रकार से धरती मां की सेवा करना कहा जा सकता है, ये उत्तर लिखा गया है। और उसका जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो होता क्या है कि उसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते, आप कीटनाशक दवाइयां नहीं डालते, तो ज्यादा आपको लाभ नहीं मिलता है, मतलब किसान को ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है, कम प्रॉफिट मिलता है। तो कम प्रॉफिट के बिना भी, यानी यह कह लीजिए कि बिना लाभ के कृषि करना धरती मां की सेवा करना है, मतलब उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है इस तरह के उत्तर लिखने वालों के दिमाग में कि सेवा का मतलब है कि जहां जिसके बदले में आप कुछ नहीं ले रहे हैं, कोई आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप फ्री में कर रहे हैं, तो आप प्राकृतिक खेती कीजिए, उसमें जितनी लागत आएगी आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा, आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि आप धरती मां की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं यह उत्तर लिखता हूं और आप एग्जामिनर हैं तो मुझे कितने नंबर देंगे? थैंक्स गॉड कि मेंस में माइनस मार्किंग नहीं है, थैंक्स गॉड, नहीं तो ये जो उत्तर है, इस तरह के जो उत्तर होते हैं वो माइनस मार्किंग के लायक होते हैं। मुझे माफ कीजिएगा ये बात कहने के लिए, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है, जबकि शुरू से मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि आप प्रश्न को अच्छे से समझिए। आपको ध्यान होगा कि मैंने अंडरलाइन भी किया था इस कथन के प्रकाश में, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं इस कथन में ही उलझ करके आप इस कथन की ही व्याख्या न करने लगे, इसी को सिद्ध करने में न जुट जाए, और यही हुआ। तो दोस्तों, मुझे लगा कि यह एक जो खतरनाक स्थिति यहां दिखाई दे रही है उसके प्रति मैं आप सभी को सचेत करूं, राइट? अगर आपने रेडियो न्यूज सुनी हो तो रेडियो न्यूज में एक बहुत ही छोटी सी खबर थी और मुझे प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण मालूम पड़ रही है, और वो ये है कि जो मणिपुर राज्य है हमारा, हमारे देश का राज्य मणिपुर, वह अनानास के उत्पादन में हमारे देश में प्रथम स्थान पर है, वहां अनानास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को गवर्नमेंट अभी प्राथमिकता दे रही है वहां के विकास को लेकर के, और उसमें ये खबर आई है और रेडियो पर आई है, यानी कि ऑफिशियल मीडिया है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में जानकारी दी ही जानी चाहिए। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनके बारे में थोड़े से निर्देश देना चाहूँगा। एक आर्टिकल है दवाओं का बेलगाम कारोबार, दैनिक जागरण का, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस बीच में इसको लेकर के काफ़ी खबरें आई हैं। मुझे नहीं लगता कि सीधे सीधे इस पर प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके जनरल स्टडीज फोर्थ पेपर का, और वह एथिक्स का। टॉपिक की बात मैं कर रहा हूँ, पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, वकीलों की अपनी नैतिकता है, खेल की अपनी नैतिकता होती है, संविधान की अपनी नैतिकता होती है, पिछले साल उस पर प्रश्न भी पूछा गया है या इस साल ही कह लीजिए, तो हर प्रोफेशन की अपनी नैतिकता होती है। तो क्या मेडिकल प्रोफेशन की भी अपनी नैतिकता है, चिकित्सा की अपनी नैतिकता है, या जो दवाई उत्पादक जो कंपनियां हैं उनकी अपनी नैतिकता है? जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको कुछ तथ्य मिल सकेंगे। तो नैतिकता का जो टॉपिक है हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस बार खासकर वो मेडिकल प्रोफेशन को लेकर के मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता हुआ मालूम पड़ रहा है। एक एडिटोरियल कमेंट मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो चिप निर्माण को लेकर के है, चिप निर्माण की चुनौतियाँ, सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ है। और आप को मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम भारत को सेमीकंडक्टर का वर्ल्ड हब बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा एडिटोरियल कमेंट है, लेकिन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिल जाएंगे, प्लीज़ इसका उपयोग करें और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट कर लें। इसी तरह से एक आपको आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ, अदालत ही बताएगी कि रिहाई सही है या गलत, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी का है, ये दैनिक भास्कर में छपा है। इसमें भी आपको कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, और खासकर वो बिल्किस बानो के मामले में, आपने मालूम है कि कुछ जो अपराधी थे उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है, उसके लिए राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया है, वो अधिकार कितने सही हैं, कानून सम्मत हैं, नैतिकता की दृष्टि से क्या होनी चाहिए, इन सब को लेकर के हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की हैं। लेकिन इस आर्टिकल में कुछ और भी बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं, प्लीज़ इन्हें ध्यान से पढ़ें, उन पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश करें और इस टॉपिक को अपडेट बनाएं। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय है स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देखिए कि जब भी आप भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कहेंगे, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे लाल किले से आह्वान किया है जिसका, तो दो पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण रेज किए जाते हैं, और वो ये है कि इसके लिए भारत को सबसे पहले तो शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और दूसरा स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, और दोनों कहीं ना कहीं ह्यूमन स्किल से जुड़े हुए हैं। शिक्षा हमें ज़्यादा दक्ष बनाती है, स्किल्ड करती है, और स्वास्थ्य हमारी श्रम शक्ति को बेहतर बनाती है, दोनों ही जो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इसलिए स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो हमेशा स्वास्थ्य पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। स्वास्थ्य की बहुत सारी चुनौतियां हैं, आप सब जानते हैं कि कहीं अस्पताल नहीं है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाइयां नहीं है, दवाइयां हैं तो दवाइयां बहुत महंगी हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार सरकार इस पर काम कर रही है और धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होती चली जा रही है। आयुष्मान भारत, आरोग्य भारत, ये सारे अभियान हैं वो शुरू किए गए हैं, जिनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। खासकर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के जिन 6 संकल्पों की बात कही है, और ये संकल्प स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। खासकर ये जो 6 संकल्प हैं, सच पूछिए तो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान इन 6 संकल्पों में है। कल हमारे प्रधानमंत्री जी जब बकायदे चंडीगढ़ के मोहाली में भामा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कर रहे थे, तब उन्होंने ये 6 संकल्प दोहराए हैं, और टीवी न्यूज़ में, यानी कि दूरदर्शन न्यूज़ में इसे बहुत हाईलाइट किया गया है, कई कई बार हाईलाइट किया गया है, और बकायदे इस पर डिस्कशन भी कराया गया है। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ आपको, अगर रेडियो न्यूज़ और दूरदर्शन न्यूज़ पर कोई बात आ रही है और हाईलाइट की जा रही है, इसका मतलब ये राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो सीधी सी बात है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण उसे मानना चाहिए। यह सीधा सीधा फार्मूला है। तो ये जो छह संकल्प हैं, ये छह संकल्प क्या? पहला संकल्प है कि सरकार जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब है कि अगर किसी को कोई बीमारी हुई है तो उसे शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए, वो गंभीर रूप न लेने पाए। तो देखिए, श्रम भी उसका नहीं लगेगा, उसका पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा, उसको तकलीफ भी ज़्यादा नहीं होगी, खर्च भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो इसे है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सरकार इसे बढ़ावा देगी। दूसरा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो हमारे छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ सुविधाएं नहीं है चिकित्सा की, वहाँ आधुनिक अस्पताल खोलना, मॉडर्न टाइप के हॉस्पिटल। ये नहीं कि किसी भी तरह का अस्पताल खोल दिया गया, कंपाउंडर किस्म के व्यक्ति को बैठा दिया गया, नहीं, आधुनिक अस्पताल जो कि कम से कम जो बहुत ही महत्वपूर्ण इलाज होते हैं वो हो सके, जो टेस्टिंग होती है वो हो सके, और अगर फिर मामला थोड़ा सा गंभीर है तो ठीक है, उसे रेफर किया जा सकता है, लेकिन कम से कम छोटे मोटे इलाज तो वहाँ हो सके। अभी ऐसी बिल्कुल स्थितियाँ नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार से ज़्यादा वहाँ कुछ भी इलाज नहीं हो सकता है। तीसरा जो संकल्प है वो है कि हर जिले में, ये बहुत बड़ी बात है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और रिसर्च के लिए संस्थान खोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर इतने मेडिकल कॉलेजेस खोल लिए गए तो आप सोच करके देखिए कि जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिकल जो फोर्स है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। डॉक्टर चाहिए, फिर कंपाउंडर चाहिए, फिर नर्सेस चाहिए, और दूसरी सुविधाओं को देने वाले लोग चाहिए। तो अगर ये अस्पताल, इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस खोल लिए जाएंगे तो कितना वर्कफोर्स हमारा बढ़ जाएगा, और फिर रिसर्च सेंटर भी खोले जाएंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिसर्च सेंटर होंगे तो स्थानीय जो बीमारियां हैं उनके आधार पर भी छोटे छोटे रिसर्च होने लगेंगे। जो नेक्स्ट चौथा जो संकल्प है वो है कि देश भर में डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाना। इसकी चर्चा मैं तीसरे पॉइंट के अंतर्गत कर चुका हूँ, क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, अस्पताल खुल जाएंगे, लेकिन अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा, तो फिर उनका उपयोग आप कैसे कर सकेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है कि मरीजों को सस्ती दवाएं और सस्ते उपकरण उपलब्ध कराना, उनको सस्ती दवाइयाँ मिल सके और सस्ते उपकरण, अगर ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज करने के लिए या ऑपरेशन के लिए, तो वो सस्ते में मिल सके, यानी कि जो इलाज हो हमारा सस्ता हो सके। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि मरीजों को बहुत तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, तो कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनकी उन परेशानियों को दूर किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि आपको हॉस्पिटल में दिखाना है, अपॉइंटमेंट लेना है, या किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के जरिए आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लें, आपको दो दो तीन तीन घंटे लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो मरीजों को परेशानियाँ हैं उन्हें कैसे कम किया जा सके। तो ये छह संकल्प हैं और छहों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने थोड़ी सी एनालिसिस करने की कोशिश की है, एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की है, इस पर आप भी विचार करें, लेकिन इसे रट डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे मालूम पड़ रहा है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, प्रेम नारायण कुशवाहा, माजिद हुसैन, आप गुरे जम्मू एंड कश्मीर से हैं, और कांता जाट, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।